समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट करिश्मा, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is Defense Minister and Chief of Army Staff killed in US-Israel airstrikes. Iran retaliates with bombings in Gulf countries.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने कार्रवाई जारी रखी तो उस पर भीषण हमले किए जाएंगे।
India calls for de-escalation through dialogue and diplomacy.
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमले किए।
Prime Minister Narendra Modi inaugurates various development projects worth 2,700 crore rupees in Puducherry, says government is taking Puducherry to greater heights.
और नागपुर के एक कारखाने में भीषण विस्फोट में 17 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया।
And in ICC Men's T20 World Cup, India to face West Indies in the final Super 8 clash at Eden Gardens, Kolkata this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Seagrass Day. Today we are diving into a powerful story about a hidden hero of ocean seagrass, where we explore the wonders beneath the waves and the vital connections between our planet and our lives. And did you know that something covering just 0.1% of the ocean floor plays a massive role in feeding millions, fighting climate change and protecting our coastlines? Well, stay tuned, because today we uncover why March 1st is now officially recognized around the world as the World Seagrass Day. And in May 2022, the United Nations General Assembly adopted a resolution officially proclaiming March 1st as the World Seagrass Day. This resolution emphasizes the urgent need to raise awareness and promote conservation efforts for seagrass ecosystems. Why? Because protecting seagrass supports the achievement of the Sustainable Development Goals, from climate action to life below water and food security. But what exactly is seagrass? What is seagrass? करिश्मा
जी, तो सीग्रास यानी कि समुद्री घास, समुद्र में पाए जाने वाले वे दुर्लभ फूलदार पौधे यानी पुष्पीय पौधे होते हैं जो अपना पूरा जीवन जलमग्न अवस्था में बिताते हैं। ये दुनिया भर के उथले तटीय जल में उष्णकटिबंधीय से लेकर आर्कटिक क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि समुद्र के नीचे हरे भरे मैदानों की जो धाराओं के साथ धीरे धीरे लहरा रहे हैं, ये जलमग्न घास के मैदान प्रदान करते हैं बहुत सी चीजें, जैसे कि हजारों समुद्री प्रजातियों के लिए भोजन और आश्रय, कछुओं और समुद्री घोड़ों के लिए आवास, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मत्स्य पालन को सहारा देते हैं। भले ही वे समुद्र के तल के केवल एक छोटे से हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है।
Yes, and one of the most remarkable things about seagrass is its ability to fight climate change. Seagrass meadows are powerful carbon sinks. In fact, they can store up to 18% of the ocean's carbon, locking it away in sediments for centuries. And this makes them a natural, cost-effective solution in the fight against global warming. Their carbon storage capacity is so significant that including seagrass ecosystems in the national climate plans can help countries meet their commitments under the Paris Agreement and the United Nations Framework Convention on Climate Change. But that's not all, is it, Karishma?
बिल्कुल, समुद्री घास प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर पानी की अम्लता कम होती है और पीएच स्तर में सुधार होता है. तटीय समुद्रों के लिए समुद्री घास के मैदान लहरों की ऊर्जा को कम करते हैं, बाढ़ और तूफानों के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में भी काम करते हैं. बढ़ते समुद्री जल स्तर और चरम मौसम का सामना कर रही दुनिया में ये पानी के नीचे के पौधे अग्रिम पंक्ति के रक्षक हैं. हालांकि अपने अविश्वसनीय महत्व के बावजूद समुद्री घास संकट में है. वैश्विक स्तर पर समुद्री घास 1930 के दशक से घट रही है और अगर हाल के अनुमानों की बात की जाए तो इनसे पता चलता है कि समुद्री घास के आवास का लगभग 7% हिस्सा हर साल नष्ट हो रहा है. इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है श्रोताओं कि 21% समुद्री घास प्रजातियों को अब प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के तहत निकट संकटग्रस्त, कमजोर या लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है. लेकिन इसका कारण क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रदूषण और भूमि आधारित अपवाह, इसके साथ डेजिंग या अनियमित मछली पकड़ना और नौका विहार, जलवायु परिवर्तन इसके तमाम ऐसे कारण हैं.
Yes, and sadly, only about a quarter of the seagrass meadows fall within marine protected areas. But here's the good news, protection works. In several parts of the country where human pressures have been reduced, seagrass meadows are recovering. Cleaner water policies, sustainable fishing practices and habitat restoration projects have shown measurable success. Seagrass restoration also plays a crucial role in the United Nations Decade of Ecosystem Restoration, which aims to revive damaged ecosystems worldwide. Some large-scale seagrass restoration projects have even been selected as world restoration flagships, recognized as leading examples of ecosystem recovery done right.
और इसके साथ ही समुद्री घास का संरक्षण कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है, जिनमें शामिल है जैविक विविधता पर सम्मेलन, पेरिस समझौता और राष्ट्रीय जलवायु प्रतिद्वंदिता, जिन्हें एनडीसी के नाम से भी जाना जाता है. समुद्री घास के मैदानों का संरक्षण और पुनर्स्थापन देशों को 10 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 26 लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिनमें शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई और जल के नीचे जीवन शामिल है. यह केवल पौधे की रक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आजीविका, अर्थव्यवस्थाओं और भावी पीढ़ियों की रक्षा करने के बारे में भी है.
Yes, and you might be wondering, how does this affect me? If you eat seafood, benefit from coastal tourism, live near a shoreline or care about climate change, seagrass affects you. It supports food security, it improves water quality, it protects home from storms and it stores carbon. Seagrass is critical for life underwater and invaluable for people on land.
तो हर साल 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाते हुए आइए श्रोताओं याद रखें कि जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे शक्तिशाली समाधान अत्याधुनिक मशीनों में नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद जीवित पारिस्थितिक तंत्रों में निहित हैं. जागरूकता बढ़ाकर, संरक्षण का समर्थन करके और तटीय क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये पानी के नीचे के घास के मैदान फलते फूलते रहे, क्योंकि जब समुद्री घास फलती फूलती है तो महासागर भी फलते फूलते हैं और जब महासागर फलते फूलते हैं तो हम सब भी फलते फूलते हैं. तो आप सभी को शांत समुद्र और एक हरे भरे भविष्य की शुभकामनाएं. और श्रोताओं अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. मथुरा, अयोध्या और वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में रंग भरी एकादशी के साथ ही होली उत्सव का शुभारंभ हो गया है. पूरा प्रदेश होली उत्सव के रंग में डूबा हुआ है. ब्रजमंडल में होली का उत्साह और उमंग भी देखने को मिल रहा है. वहीं हर वर्ष की तरह मथुरा के बरसाना में खेले जाने वाली लठमार और लड्डूमार होली इस बार भी देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही. काशी और अयोध्या में भी होली को लेकर उत्साह का माहौल है.
प्रदेश भर में रंग भरी एकादशी के साथ होली उत्सव की शुरुआत हो गई है. इस अवसर पर शुक्रवार को मथुरा वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने फूलों और अबीर गुलाल की होली खेली. देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। लठमार होली के दौरान भी मथुरा के बरसाना की राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। मान्यता है कि बरसाने की गोपियों की लाठी जिसके सिर को छू जाए वह भाग्यशाली होता है। इसके एक दिन पहले बरसाना के प्रमुख श्रीजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डूमार होली का भी ब्रज में विशेष महत्व है। इस दिन नंदगांव के हुरियारों को न्योता देकर पांडा बरसाना लौटता है, जिसका लोग लड्डू फेंककर स्वागत करते हैं। वाराणसी में भी होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। रंगभरी एकादशी के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में परंपरा के अनुसार महादेव की चल प्रतिमा को मंदिर में लाया गया, जहां भक्तों ने महादेव को अबीर गुलाल अर्पित किया। काशी में इस अवसर पर हरिश्चंद्र घाट पर भस्म होली भी खेली गई। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी होली उत्सव की शुरुआत हो गई है। रंगभरी एकादशी पर हनुमान गढ़ी में विराजमान हनुमान जी का पूजन अर्चन कर होली उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
Yes, now we take a look at Gujarat, and Gujarat has taken a decisive step towards realizing Prime Minister Narendra Modi's vision of making India a global semiconductor hub with the Gujarat SemiConnect Conference 2026, commencing today at Mahatma Mandir in Gandhinagar. Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav will join Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi inaugurated this high-level summit. We have a report from a correspondent.
The two-day conference has garnered massive global interest with over 2,500 registrations from 8 different countries and participations from industry giants including Tata Electronics, Micron Technology that are participating in the summit to strengthen the global supply chain. The two-day summit is featuring specialized panel discussion focused on the next generation semiconductors, world-class logistics in Dholera and the pivotal role of GIFT City in semiconductor financing. Key international roundtables with partners from Japan, Taiwan and South Korea are scheduled to foster collaborations. Addressing the inaugural event, Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav said the trio of artificial intelligence, semiconductors and electronic manufacturing is set to drive India's next phase of exponential growth. The minister stressed that the new priority under Semicon 2.0 is on building a robust deep tech startup environment and localizing the entire manufacturing chain, a vision inspired by the strong industrial foundations seen in nations like Japan. On the second day, delegates will visit Dholera Semicon City to witness the state-of-the-art plug-and-play infrastructure firsthand. This third edition of the conference is expected to be a major milestone in securing India's technological self-reliance and creating a robust electronic ecosystem. With Aparna Kunt's report for Parikrama, this is Jigyasa Pandey.
अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में सामाजिक एकता, आपसी विश्वास और सकारात्मक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारी संस्था के एकता और विश्वास से महाराष्ट्र का स्वर्णिम काल इस राज्य स्तरीय अभियान का उद्घाटन नागपुर के निकट जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।
इस हफ्ते 25 फरवरी की शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एकता और विश्वास से महाराष्ट्र का स्वर्णिम काल इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त समाज, संतुलित जीवन शैली, स्वच्छता, मूल्याधारित शिक्षा, योग, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि समृद्ध महाराष्ट्र और समृद्ध भारत के निर्माण हेतु ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम द्वारा लोगों को आंतरिक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और मूल्य आधारित विकास की प्रेरणा मिलेगी। अपने संबोधन में सकारात्मकता पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा,
मुझे विश्वास क्योंकि मनुष्य के मन में जो भी प्रकृति है, सुख शांति आनंद प्रेम, हम तो प्रेम के प्रतीक है, हम विश्वास के प्रतीक है, हम पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी तो प्रकृति का दान है, पॉजिटिविटी भी प्रकृति का दान है। मुझे लगता है नेगेटिविटी को छोड़ना है और पॉजिटिव चलना है, और वो दिन दूर नहीं जो सपने देखते हैं इस स्वर्णिम भारत बनाने के लिए। कोई इसको कहते हैं विकसित भारत, कोई कहते हैं विश्व गुरु या कोई कहते हैं स्वर्णिम युग।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकीकरण और महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया आंदोलन केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत के सामाजिक पुनर्जागरण का आधार बना। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय माउंट अबू के राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, राजयोगिनी बीके चंद्रिका दीदी तथा राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से मैं नम्रता फलके।
Yes, and Akashvani News is starting a new series, People's Padma, on Akashvani. In this series, we speak to Padma awardees for the year 2026. In the first episode of the series, we speak to Professor V. Kamakoti, Director of IIT Madras. Professor Kamakoti will be honored with the Padma Shri for his contributions in the field of science and engineering.
2009, I became professor. 2010, I became chairman of the joint entrance examination, which once I failed. Success means do more work. That is my way. Thus, there's a long way to go. Gives Dixit Bharat 2047. It's a very, very important milestone. And we have to prepare our youth, prepare our institutions. I consider this Padma Shri at the peak, you know, motivation for me to work more and more, meeting the students and going to the hostel, spending time with these young kids. I think that's the way I am.
And to listen to the podcast, tune into 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां के हलचल. सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे. आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा. मैच शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और एक अन्य मुकाबले में दोपहर 3 बजे दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे. और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed.
In today's episode, we remember freedom fighter Vasundhara Patil, who died on the 1st of March 1989.
Born on 13th November 1917 in Sangli of Maharashtra, Vasundhara Patil was highly influenced by Sardar Patel and Netaji Subhash Chandra Bose. While he believed in the Gandhian philosophy of Satyagraha, he also believed that Satyagraha, morchas or people's movements alone would not fetch freedom. He was also engaged in revolutionary activities.
The British government filed many criminal cases against him and arrested him. Following the individual Satyagraha of Vinoba Bhave, Vasundhara Patil became a Satyagrahi. After independence, Vasundhara became Chief Minister of Maharashtra 3 times between 1976 and 1985. We salute the great nationalist.
Chal pade jidhar do dagmag me, chal pade koti pag usi or. Pad gayi jidhar bhi ek drishti, gad gaye koti drig usi or.
We also remember freedom fighter and poet Sohan Lal Dwivedi, who died on the 1st of March 1988. Considered as a national poet, he was deeply influenced by Mahatma Gandhi. Sohan Lal was born on 22nd February 1906 in Fatehpur, Uttar Pradesh. He is known for his patriotic poems, including Yugavatar Gandhi.
Jiske sir par nij dhara hath, uske shir rakshak koti hath. Jis par nij mastak jhuka diya, झुक गए उसी पर कोटि माथ. तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना. कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना.
युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधार. युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार. दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रोक. नित महाकाल की छाती पर, लिखते करुणा के पुण्य श्लोक. हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र. इस राजतंत्र के खंडहर में, उगता अभिनव Bharat Swatantra.
Dwivedi was honored by the Government of India in 1970 with Padma Shri. We salute the great Indian.
We also remember freedom fighter Nohal Singh, who was deported to Andaman Islands for taking part in the First War of Indian Independence in 1857. Initially, a soldier in the Bengal Army of the English East India Company, he left his service and took part in several attacks on British establishments at different places in Bihar and Bengal.
He was caught and charged with mutiny against the British authorities and sentenced to be transported for life with labour and irons. He died in detention in Kalapani.
We also remember nationalist Maharani Urai. She participated in the Tebhaga movement and was shot dead in the police firing while raiding the Jyotidas granaries in Jalpaiguri, West Bengal. On the 1st of March 1947, we salute the brave daughter of India.
Yes, and we're also remembering George Herbert, who passed away on this day in 1633. He was an English poet, orator, and priest of the Church of England. His poetry is associated with the writings of the metaphysical poets and is recognized as one of the foremost British devotional lyricists. He was born in Wales into an artistic and wealthy family and largely raised in England. He received a good education that led to his admission to Trinity College, Cambridge in 1609. He enrolled intending to become a priest but became the university's public orator and attracted the attention of King James I.
और इसके साथ ही आज हम प्रसिद्ध गुजराती लेखक और व्यंग्यकार तारक मेहता को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तारक मेहता अपनी सरल, हास्यपूर्ण और सामाजिक संदेश देने वाली लेखन शैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आम जीवन की छोटी छोटी बातों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया और समाज को सकारात्मक सोच का संदेश दिया। उनका लोकप्रिय रचना आधारित टीवी कार्यक्रम आज भी लोगों को घरों घरों में उनका मनोरंजन करता रहा है, जिसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। साहित्य और समाज के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and we are also remembering Manmohan Desai, who passed on this day in 1994. He was an Indian film producer and director. He was one of the most successful filmmakers of the 70s and 80s. Desai was an influential and sought-after film director of Bollywood and a pioneer of making masala films. His most successful films are Amar Akbar Anthony, Dharamveer, Chacha Bhatija, Parvarish, Suhag, Naseeb, Kuli and Mard. Let's go ahead and listen to a dialogue from that movie.
Upar wala bhooka jagata zarur hai, lekin bhooka sulata nahi. Izzat ki kamate hain, izzat ki khate hain, kisi ke samne haath nahi phailate.
Yes, and Manmohan Desai was known for his family-centered action, song and dance films which catered to the taste of the Indian masses and through which he achieved great success. His movies defined a new genre called masala films. A common theme in his films was the lost and found plot, where family members would be separated and reunited. Let's listen in to yet another dialogue from that movie.
तलवार जब भी उठी है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उठी है, लेकिन आज ये तलवार तो जैसे गद्दार की बलि चढ़ाने के लिए उठेगी।
मेरे सर पर जब तक मेरे माँबाप का आशीर्वाद है, लोहे की तलवार तो क्या? आसमान से गिरने वाली बिजलियाँ भी मेरा।
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम करतार सिंह दुग्गल को भी याद कर रहे हैं, हिंदी और पंजाबी के प्रख्यात लेखक, कथाकार और नाटककार थे वे। उनका जन्म आज ही के दिन पंजाब में हुआ था। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और रेडियो नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे आकाशवाणी से भी जुड़े रहे और रेडियो के माध्यम के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
फतेह सिंह राठौर पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2011। ही वाज एन इंडियन टाइगर कंजर्वेशनिस्ट। Fateh Singh joined the Indian Forest Service in 1960 and was a part of the first Project Tiger team. He was widely acknowledged as a tiger guru for his legendary knowledge of the big cat. He worked over 50 years in wildlife conservation. Rathore was noted for his pioneering relocation of villages from inside the Ranthambore National Park in 1973-75. And largely because of Mr. Rathore, Ranthambore became the place which brought the tiger to the consciousness of people the world over.
और इसके साथ ही आज हम प्रख्यात बंगाली साहित्यकार अंतिन बंदोपाध्याय का जन्मदिवस भी मना रहे हैं। उपन्यास और कथा साहित्य में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में जीवन संघर्ष, मानवीय संवेदना और समाज की सच्चाई का चित्रण भी मिलता रहा। सरल भाषा और प्रभावशाली शैली उनकी लेखन की प्रमुख विशेषता रही। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और बंकिम पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया।
Yes, and Justin Drew Bieber was born this day in 1994. He is a Canadian singer, regarded as a prominent figure in contemporary popular music. He rose to fame the late 2000s with his debut extended play, My World, in 2009, receiving international recognition and establishing him as a teen idol. Bieber rose to further fame with his debut album, My World 2.0, which topped the US Billboard 200, making him the youngest solo male to do so in 47 years. Its lead single, Baby, became one of the best-selling singles in the United States. And also, Karishma, Bieber explored electronic dance music with his 2015 single, Where Are You Now, which won the Grammy Award for Best Dance Electronic Recording. Let's listen to it.
I gave you the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope. Can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you?
Where are you now?
Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere.
इसके साथ ही शरद कुमार का आज जन्मदिवस है। भारत के प्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं वो। उन्होंने ऊंची कूद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। बचपन में बीमारी के कारण उनके एक पैर में स्थायी असर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने एशियाई पैरा खेल में 2 बार स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा पैरालंपिक खेलों में भी पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and Harry Belafonte was born on this day in 1927. He was an American singer, actor, and civil rights activist who popularized calypso music with international audiences in the 1950s and 1960s. Belafonte's career breakthrough album Calypso in 1956 was the first million-selling LP by a single artist. He also starred in films such as Carmen Jones, Island in the Sun, Odds Against Tomorrow, Buck and the Preacher, and Uptown Saturday Night. He made his final feature film appearance in Spike Lee's Black Klansman. Let's listen in to his hit track, Mary's Boy Child.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today.
Yes, and Paul John Hollywood was born on this day in 1966. He is an English celebrity, chef and television personality, widely known as a judge on the Great British Bake Off since 2010. Hollywood began his career at his father's bakery as a teenager and went on to serve as a head baker at a number of British and international hotels. After returning from work in Cyprus, Hollywood appeared as a guest on a number of British television programs on both BBC and ITV. After beginning his broadcast career in food programming, he diversified into other areas, including motoring.
और इसके साथ ही आज हम भारतीय फिल्म जगत के प्रख्यात गीतकार, निर्माता, लेखक और मीडिया विशेषज्ञ अमित खन्ना को याद कर रहे हैं। अमित खन्ना ने हिंदी सिनेमा को कई लोकप्रिय गीत दिए और फिल्म निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुड़िया, सरदारी बेगम और भैरवी जैसी फिल्मों में उनका नाम जुड़ा रहा। उनके रचनात्मक कार्य के लिए उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए बतौर गीतकार उनका ये संगीत सुनते हैं।
गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अभिषेक मुखोपाध्याय को। नमस्कार।
नमस्कार।
सजाते रहना।